हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 34, 35 एंड 36। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञान्तिमुरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायां ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीताम्भरतरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे वेदे साङ्गपत् कामोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तत् गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम् ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया भगवतीयुत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकम् भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद 10वां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। तो हमने देखा कि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी चतुरांगिरी सेना के साथ भगवान को विदा दिया और भगवान हस्तिनापुर की दहलीज को पार करके इन कुल स्त्रियों के उद्गार को सुनते सुनते मंद मंद मुस्कुराते हुए उनका अभिनंदन करते हुए हस्तिनापुर से आगे अपनी नगरी की ओर चले। फिर आज सूत गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि जब भगवान हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जा रहे थे तो आस पास के जितने भी स्थान थे उन सब जगहों पर भगवान अपने प्रेमियों को दर्शन देने के लिए और उनसे मिलने के लिए गए। तो किन किन देशों को पार करके भगवान द्वारिका जा रहे हैं उनके विषय में आज सूत गोस्वामी बता रहे हैं। वे कहते हैं कुरु जंगल पांचाला शूरसेनान सयामुनान ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतानथ मरुधन्वम अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान आनर्तान भार्गवो पाकास शांतवाहो मनाक्विभु कुरु जंगल पांचालां शूरसेनां सयामुनां ब्रह्मावर्तं कुरुक्षेत्रं मत्स्यान् सारस्वतानथ मरुधन्वं अतिक्रम्य सौवीराभिरयो परान आनर्तान भार्गवो पाकाश शांतवाहो मनाक्विभु कुरु जंगल का मतलब के देखो ये सारे जो नाम लिखे हुए हैं ना अभी ये सारे नाम चेंज हो गए हैं लेकिन जो ये बता रहे ना जगह बता रहे जैसे तो उससे हमें पता चलता है कि वहां पर ये स्टेट है या वहां पर ये जिला है तो उसको हम समझ सकते हैं इस तरह से। कुरु जंगल यानी कि दिल्ली के प्रांत दिल्ली से उत्तर कोने में इसी क्षेत्र को कुरु जंगलान कहते हैं यानी जहां पर कुरुक्षेत्र भी है ना उस हिस्से को पांचाल देश यानी कि जहां पर पंजाब प्रांत का भाग होता है जहां पर पांचाली। अब भगवान यहां पर क्यों जा रहे हैं क्योंकि द्रौपदी के संबंधी होंगे वहां पर पांचाली है ना वो तो पांचाल देश वहां पर भी गए भगवान और वहां उन सबसे मिलने जा रहे थे। और उसके बाद शूरसेनान का मतलब होता है जो उत्तर प्रदेश के जो जितने भी भाग हैं जिसमें प्रमुख है मथुरा और मथुरा के अड़ोस पड़ोस के जितने भी छोटे बड़े शहर हैं वहां पर। स यामुनान अब यहाँ पर यामुना मतलब यमुना के तट पर जितने भी जिले हैं वहां पर भी भगवान गए। यहां से ये पता चलता है कि भगवान वहां पर गए जहां पर उन्होंने बचपन में बहुत सारी लीलाएं की रासलीला इत्यादि क्योंकि यमुना के तट की बात यहां पर बताई जा रही है। और आगे ब्रह्मावर्तम का मतलब होता है उत्तरी उत्तर प्रदेश यानी जहां पर गंगा और यमुना के सेंटर का जो पोर्शन है ना उसको ब्रह्मावर्तम कहते हैं। और आगे कुरुक्षेत्र अर्थात वो स्थान जहां पर युद्ध हुआ था ब्रह्मावर्तम कुरुक्षेत्रम मत्स्यान सारस्वतान था। मत्स्यान का मतलब होता है यहां पर एक जगह है मत्स्य प्रांत कहते हैं यहां पर बहुत सारी मछलियां होती थी तरह तरह की इसलिए उसको मत्स्यान कहा गया। और सारस्वतान यानी पंजाब का एक हिस्सा है जहां पर सरस्वती नदी बहती है। अभी सरस्वती नदी जहां जहां भी बहती है ना वहां उसको सारस्वतान कहते हैं। और अथ मतलब इत्यादि कहां पर मरु का मतलब होता है राजस्थान के वो एरियाज जहाँ पर जल नहीं होता ना, जल बहुत होता ही नहीं है, उनको मरुस्थल बोलते हैं। और ये जो धनवम है, धनवम का मतलब होता है मध्य प्रदेश, जहां पर जल होता तो है लेकिन बहुत कम, जहां जलाभाव है। मरु में बिल्कुल जल नहीं होता और धनवम में थोड़ा सा जल होता है। इसका मतलब ये है कि उस समय भी राजस्थान को मरुभूमि कहा जाता था, जहां पर जल नहीं है। तो आज भी जब हम द्वारिका की ओर जाते हैं तो इनमें से ये सारे एरियाज को हमें पार करना पड़ता है, लेकिन भगवान ने क्या किया है, क्रम से सीरीज में पार नहीं किया, बस जहां जहां से लग रहा है, क्योंकि अब भगवान आ रहे होंगे तो सब लोग को पता चलता होगा कि भगवान आ रहे हैं, तो भगवान को बुलाने के लिए कि भाई भगवान आप इधर से जा ही रहे हो तो हमारे यहां से होते हुए जाओ, तो उनको बुलाने के लिए जहां से भी उनके भक्त आते थे तो भगवान वहां पर उनके साथ जाते थे अतिक्रम्य। फिर जब वहां से निकल कर सौवीरान यानी सौराष्ट्र का मतलब होता है जो गुजरात साइड से भगवान निकले, और आभीर्यो गुजरात का हिस्सा है जो आभीर्यो परान यानी पश्चिमी दिशा, अभी वो पश्चिमी दिशा की ओर कहाँ जा रहे थे, आनर्तान। आनर्तान मतलब एक आनर्त नाम का राजा था जो बहुत पहले द्वारिका के राजा थे ना, इसलिए उसका नाम आनर्तान भी है। अब ये सारे एरियाज को क्रॉस करके भगवान द्वारिका की ओर जा रहे हैं, और उस समय सूत गोस्वामी कहते हैं भार्गवो, हे भार्गव, हे शौनक मुनि, भार्गव मुनि बोलते शौनक जी को, कहते हैं उपगात शांत वाह, वाह कहते हैं घोड़ों को, शांत का मतलब होता है थक गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे उनके घोड़े, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भगवान ने बस सारे ये सारे एरिया जिनका नाम लिखा गया है वो एक ही दिन में बस फटाफट फटाफट कर लिए, बहुत दिन तक भगवान जो है वो इस तरह से सफर में जा रहे थे। और इस तरह आगे कह रहे हैं भार्गव उपगातान शांत वाह मनाक विभु, यानी कि बहुत लंबी यात्रा हुई ना इसलिए भगवान के घोड़े थोड़ा थक गए थे। अनुवाद, हे शौनक, तब भगवान कुरु जंगल पांचाल शूरसेन यमुना तटवर्ती प्रदेश ब्रह्मावृत कुरुक्षेत्र मत्स्या सारस्वत्या मरुप्रांत तथा जलाभाव वाले भाग से होते हुए आगे बढ़े। इन प्रांतों को पार करने के बाद वे सौवीर तथा आभीर प्रांत पहुंचे और अंत में इन सब के पश्चिम की ओर स्थित द्वारिका पहुंच गए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान जिन जिन प्रांतों से होकर गए वे इस उस समय भिन्न नाम से जाने जाते थे, लेकिन जो दिशा दी गई है उससे यह सूचित होता है कि वे दिल्ली पंजाब राजस्थान मध्य प्रदेश सौराष्ट्र तथा गुजरात से होकर यात्रा करते हुए अंत में अपने निवास स्थान द्वारिका पहुंचे। हमें इन दिनों से आज तक इन प्रांतों के समानार्थी प्रांतों के नाम ढूंढने से कोई भी लाभ मिलने वाला नहीं है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि 5000 वर्ष पूर्व भी राजस्थान का मरुस्थल तथा मध्य प्रदेश जैसे जलाभाव वाले प्रांत विद्यमान थे। मृदा विशेषज्ञों का यह सिद्धांत है कि मरुस्थल हाल ही में विकसित हुए हैं, भागवत के कथन से पुष्ट नहीं होता है। हम इस विषय में भूगर्भ विज्ञानियों द्वारा खोजे जाने के लिए छोड़ देते हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं इसके ऊपर इतना ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है कि वो वाकई में यही वाला इलाका था या पहले वाकई में पानी यहाँ पर होता था नहीं होता था, लेकिन अभी पता चलता है मरुस्थल लिखा हुआ है तो फिर भी श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं जो ये विज्ञानी होते हैं ना साइंटिस्ट जो बहुत ज्यादा इनको और कोई काम नहीं होता बस खोजते रहते हैं रिसर्च करते रहते हैं, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये टॉपिक है ना उनके लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि परिवर्तनशील ब्रह्मांड में भूगर्भीय विकास की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। सारे ब्रह्मांड तो परिवर्तन होते रहते हैं और जिन जो जो एरियाज हैं उनके नाम भी चेंज होते रहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी आखिर में कहते हैं कि हमें प्रसन्नता है कि भगवान अब कुरु प्रांत से अपने निजी प्रांत द्वारिका धाम में पहुंच गए हैं। कुरुक्षेत्र वैदिक काल से विद्यमान है, अतः जब व्याख्याकार कुरुक्षेत्र के अस्तित्व को नकारते हैं तो यह उनकी निरी मूर्खता प्रतीत होती है। कुछ कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह ही नहीं, तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर ऐसा होता तो यहाँ पर क्यों लिखा जाता कुरुक्षेत्र, है ना, ब्रह्मवर्तम कुरुक्षेत्र मत्स्यान सारस्वत। तो बोला वो बिल्कुल मूर्ख लोग हैं जो शास्त्र की बात को नहीं मानते। आगे श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर तात्पर्य समाप्त हुआ। आगे सूत गोस्वामी श्लोक नंबर 36 में अत्यंत ही सुंदर बात बताते हैं। वे कहते हैं तत्र तत्र हि तत्रत्यये हरि प्रत्युत्यथा हृतम् हरि प्रत्युत्यथा हरण तत्र तत्र हि तत्रत्यये हरि प्रत्युत्यथा हरण साह्यं बीजे दिशं पश्यात् गविष्टो गां गतस्तदा तत्र तत्र हि तत्रत्यये हरि प्रत्युत्यथा हरण साह्यं बीजे दिशं पश्यात् गविष्टो गां गतस्तदा तत्र तत्र हि तत्रत्यये हरिः प्रत्युत्यतार्हण सायं बीजे दिशं पश्यात् गविष्टो गां गतस्तदा तत्र तत्र हि तत्रत्यये तत्र तत्र मतलब विभिन्न विभिन्न स्थानों में। अब भगवान जब जा रहे हैं रास्ते में जो जो जगह आ रही है तत्र तत्र ही तत्रस्थ्य तत्रस्थ्य मतलब कि ऐसी घटना घटी तत्रत्य जो स्थानीय निवासियों द्वारा जो भी। अभी देखो भगवान जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर जो लोग रहते हैं वहाँ के तत्रत्य वहाँ के रहने वाले जितने भी लोग हैं, अब भगवान आए हैं तो उनसे बहुत प्रेम करते हैं। वास्तव में यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के पास जब जाएं या जब भगवान हमारे पास आएं तो उन्हें क्या करना चाहिए प्रत्युत यतार्हण यानी कि उनको उपहार देना चाहिए। वो तो जो भी लोग होते थे वहां पर एरिया के जहां जहां भगवान जाते थे तो वहां पर क्या होता था भेंटे दे जाते थे, वहां पर बहुत सारे उपहार भगवान को मिलते थे और भगवान को उनकी पूजा की जाती थी, उनका सम्मान उनको अर्पण किया जाता था। यानी जहाँ जहाँ भगवान जाते थे उनका बहुत ही अच्छे से रिसेप्शन होता था, बहुत अच्छे से भगवान का स्वागत किया जाता था। और जब भी यानी कि जब दिन साय भेजे दिशम पश्चात यानी साय भेजे मतलब शाम के भेजे जब शाम होती थी दिन ढलता था और आगे कहते हैं दिशम दिशा मतलब दिशा में पश्चात फिर पूर्वी दिशा में पश्चिम में क्या होता था गविष्टो गविष्टो कहते हैं सूर्य को, गाम मतलब समुद्र को, सूर्य जब समुद्र में गतस्तदा चला जाता था। इसका मतलब ये है कि जब सूर्य अस्त हो जाता था, देखो सूर्य दो तरह से अस्त होता हुआ दिखाई देता है संसार में। एक तो जब ऐसा लगता है अगर आप समुद्र के तट पर जाते हो ना तो ऐसा लगता है सूर्य जो है वो धीरे 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 समुद्र के अंदर चला जाता है। ऐसे सूर्य जो है वो अस्त होने के दो इस तरह या फिर क्या होता है पर्वतों के अंदर चला जाता है ना, हमें ऐसा दिखता है। वैसे तो सूर्य बहुत दूर है पर्वतों और ना इस समुद्र से, लेकिन अस्त होते हुए जब पश्चिम में ऐसा होता है तब देखते, जैसे कभी कभी हम जाते हैं ना सनसेट पॉइंट्स में तो वहां पर ऐसा लग रहा होता है, एक द्वारिका के करीब भी सनसेट पॉइंट है जहां पर हम गए थे, तो ऐसा लग रहा था कि सूर्य बस समुद्र के अंदर चला गया है, ऐसा मतलब एकदम क्लियर दिख रहा होता है। तो यहां पर बता रहे हैं सूर्य अस्त होते थे जब भी, यानी संध्या के समय भगवान क्या करते थे, संध्या वंदन करते थे। संध्या वंदन का मतलब ये नहीं संध्या का वंदन करते थे, मतलब संध्या का जो समय होता है वो ईश्वर के साथ अपने संबंध को स्मरण करने के लिए होता है। तो उसको जब हम संध्या के समय भगवान के साथ अपने संबंध को स्मरण करते हैं, भगवान की आरती करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, इसको संध्या वंदन कहते हैं। तो ये भगवान हमें दिखा रहे हैं, भगवान को संध्या वंदन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान फिर भी यहाँ पर बताया सायं बेजे दिशम पश्चात, शाम के समय भगवान अपने रथ से नीचे उतर जाते थे और संध्या वंदन करते थे। भगवान हम जीवों को ये सिखाना चाहते हैं कि देखो हर दिन आता है और जब सांझ आती है तो तुम्हें ये एहसास होना चाहिए कि आज का दिन समाप्त हो रहा है। तो भगवान का शुक्र अदा कर, भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान आज का दिन जो दो सुबह के जो तीन पहर थे वो सुख से बीत गए, अब आप कृपा करना कि आखिरी के जो दो पहर रह गए हैं वहां पर भी उसमें भी हम आपका नाम स्मरण करते हुए आपको याद करते हुए सत्य के साथ अपने इस दिन को समाप्त करें। मतलब ये समय रखा गया है स्पेशली संध्या का समय होता है, तीन दफा संध्या होती है वैसे तो, एक तो जब मंगल आरती करते हैं हम लोग सूर्य उदय होने से पहले, और दूसरा दोपहर को 12 बजे तक, और तीसरी संध्या जब शाम को सूर्य अस्त होता है उस समय। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं कि वो समय मैंने रखा है पूजा करने के लिए, भक्ति करने के लिए, परंतु आजकल लोग तो कुछ सोचते ही नहीं है, बस सुबह होती है शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, दिन बीत जाता है, किसी को ये भी एहसास नहीं होता कि हमारे जीवन का एक दिन समाप्त हो गया। लेकिन जब दिन बीतता है उसका मतलब ये है कि आपकी आयु की अवधि समाप्त हो रही है, एक इकाई समाप्त हो रही आपके दिन की। तो पहले के लोग बड़ी तत्परता से भगवान का स्मरण करते थे इस समय, और भगवान जो है वो मनुष्य लीला कर रहे हैं। अभी देखो भगवान क्या है, सफर में है, है ना, बोलते हैं भाई कभी कभी हम बोलते हैं कि हम तो सफर में थे या यात्रा में थे तो हम है ना कैसे करते, भक्ति नहीं कर सकते। लेकिन भगवान अभी दिखा रहे हैं क्या करते थे, जब सफर में भी होते थे तो वो समय जो है जब संध्या का जब सूर्यास्त होता था तो भगवान संध्या वंदन करने के लिए नीचे उतरते थे अपने रथ से। अर्थात भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि मृत्यु तो कभी भी आ सकती है, तो कोई दिन भी ऐसा नहीं होना चाहिए जब भगवान का स्मरण, ऐसा दिन आपके जीवन में नहीं आना चाहिए जिस दिन भगवान का स्मरण न हो। अनुवाद, इन प्रांतों से होकर यात्रा करते समय उनका स्वागत किया गया, पूजा की गई और उन्हें विविध भेंट प्रदान की गई। संध्या समय सारे स्थानों में संध्याकालीन अनुष्ठान यानी कृत्य करने के लिए भगवान अपनी यात्रा स्थगित कर दे। सूर्यास्त के बाद नियमित रूप से ऐसा किया जाता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि यहाँ ये बताया गया है कि जब भगवान यात्रा पर थे तो वे नियमित रूप से धार्मिक नियमों का पालन करते रहे। ऐसा दार्शनिक अनुमान है कि भगवान भी सकाम कर्मों को करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन वास्तव में बात ऐसी नहीं है। वे किसी अच्छे या बुरे कर्म पर आश्रित नहीं है, चूंकि भगवान परम है, अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के लिए कल्याणकारी होता है। तो भगवान को इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं, वो बाध्य नहीं है कर्मों के अनुसार ये सब कार्य करने के लिए। क्योंकि वो चाहे कुछ भी करें वो सबके लिए कल्याणकारी होगा। अतएव वे जो भी करते हैं वह सबों के लिए कल्याणकारी होता है, किंतु जब वे पृथ्वी पर अवतार लेते हैं तो वे भक्तों की रक्षा करने के लिए तथा अपवित्र अभक्तों के विनाश करने के लिए कर्म करते हैं। यद्यपि उनके लिए कुछ भी करना अनिवार्य नहीं है, किंतु वे सब कुछ करते हैं जिससे अन्य लोग उनका अनुगमन करें। भगवान हमको सिखाने के लिए कार्य करते हैं, भगवान को इन कार्यों को करने के लिए कोई कर्म का बंधन नहीं है भगवान को। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वास्तविक उपदेश की विधि यही है, मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं आचार्य जो होता है, गुरु जो होता है उसको आचार्य होना चाहिए। जब हम खुद करेंगे तो हमको देखकर जो दूसरे भी हैं वो भी करेंगे। अभी कोई पिता हो अपने बच्चे को बोले कि देखो बेटा सिगरेट मत पीना, है ना, सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है, और वो खुद अगर साइड में बैठ के सिगरेट पी रहा है तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि उसका बेटा कुछ सीखेगा, है ना। उसी तरह से भगवान हमें शास्त्र में कहते हैं कि जीव को संध्या वंदन करना चाहिए और भगवान का ना संध्या के समय भगवान की भक्ति करनी चाहिए, पूजा इत्यादि करनी चाहिए। तो यही चीज भगवान हमें सिखाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं यदि मैं अपने कार्य को नहीं करूंगा तो सारे लोग मुझे फॉलो करेंगे। और भगवान कहते हैं भगवत गीता में श्रेष्ठ लोग जो कार्य करते हैं साधारण लोग उसी का अनुगमन करते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं कि वास्तविक उपदेश की विधि यही है कि मनुष्य को चाहिए कि स्वयं उचित कर्म करे और अन्यों को भी यही शिक्षा दे, अन्यथा उसका अंधानुगमन कोई नहीं करेगा। वे स्वयं कर्म फलों के दाता हैं, वे आत्मा राम हैं, फिर भी वे हमें शिक्षा देने के लिए शास्त्रों के अनुसार कर्म करते हैं। यदि वे ऐसा न करें तो सामान्य लोग कुमार्ग पर चले जाएंगे, लेकिन आगे चलकर जब मनुष्य भगवान की दिव्य प्रकृति को समझ सकता है तो वह उनका अनुकरण नहीं करता, लेकिन यह संभव नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान का अनुसरण करना चाहिए, जो भगवान ने बताया कि भाई ऐसा करो और करके दिखाया है वो कार्य करने चाहिए, लेकिन जो भगवान ने नहीं कहा है करने के लिए, जो भगवान की निजी कार्य हैं, जो लीलाएं हैं भगवान की, उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं मानव समाज में भगवान वही करते हैं जो सबका कर्तव्य होता है, लेकिन कभी कभी वे ऐसा कर्म भी करते हैं जो जीव द्वारा अनुकरणीय नहीं होता। यहाँ पर लिखे अनुसार उनके संध्या वंदन कार्य का पालन हर जीव को करना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा गोवर्धन का उठाया जाना या गोपियों के साथ उनके रास का अनुगमन कर पाना संभव नहीं है। श्री प्रभुपाद जी बोलते ऐसा नहीं भगवान ने जो कुछ किया है हमें उसकी नकल करनी चाहिए। ये जो भगवान लीला करके दिखा रहे हैं, अर्थात संध्या वंदन करना, अपने माता पिता का आदर करना या फिर छोटों से प्रेम करना, ये सब तो हम हमें करना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो लीलाएं की हैं, गोवर्धन उठाना या गोपियों के साथ रास करना, कुछ लोग बोलते भगवान ने किया है तो फिर हम लोग भी करें, लेकिन इनका नकल नहीं करना होता है। कोई सूर्य का अनुकरण नहीं कर सकता क्योंकि वह गंदे स्थान से भी जल का शोषण कर लेता है। सर्वशक्तिमान ऐसा कुछ भी कर सकता है जो सबों के लिए कल्याणप्रद हो, लेकिन यदि हम उनका अनुकरण करने लगे तो हम कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। हरे कृष्णा सॉरी, कुछ लोग होते हैं ऐसे जो बोलते हैं कि है ना, भगवान ने गोपियों के साथ रास के लिए तो हमें भी करनी है, भगवान ने इतनी सारी शादियां की हैं तो हमें भी ज्यादा शादियां करनी चाहिए। तो उनको ये बताना चाहिए कि भगवान की नकल नहीं की जाती, भले भगवान ने जो भी किया है वो भगवान है, सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकते हैं। उनकी लीलाओं को पढ़कर हमें आनंदित होना है, उनकी लीलाओं को पढ़कर हमें भगवान के प्रति अपने प्रेम और आदर को विकसित करना है, उनका अनुकरण नहीं करना है। अगर हम लोग उनका अनुकरण करेंगे तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं हम कठिनाइयों में पड़ जाएंगे। अतएव सारे कर्मों में एक अनुभवी मार्गदर्शक की अर्थात गुरु की राय लेनी चाहिए, जो भगवत कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। यानी कि गुरु से हमें अवश्य परामर्श करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं भी कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपाते न परो परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, कि तुम किसी शुद्ध गुरु के पास जाओ तो तत्वदर्शी होगा, वो ही तुम्हें वास्तविक ज्ञान प्रदान करेगा। उससे विनम्रता से पूछो, वो बताएगा तुम्हें और उसी के आदर्श अनुसार आपको कार्य करना है, क्योंकि वो भगवत कृपा का प्रत्यक्ष स्वरूप है। भगवान ने गुरु को भेजा इसलिए है कि वो हम जैसे अज्ञानी जीवों का मार्गदर्शन करे, इस तरह निश्चित रूप से प्रगति हो सकती है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान शीर्षक 10वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।